بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس کا اعلان فرمایا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کہ میں اپنے نبی لاڈلے نبی کو بھیجنے والا ہوں, تم ان کی نصرت مدد کرو گے اگر تم ان کے زمانے کو پاؤ. تو یہ سب سے عہد لیا گیا اور ان کے ذریعے تمام امتیں یہ جانتی تھیں ان کی کتابوں کے ذریعے انہیں علم تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. اسی لیے کسرا کو بھی علم تھا, اور اس علم کو تازہ کرنے کے لیے پھر خوابوں کے ذریعے انہیں ہلایا گیا. بیداری میں خرق عادت واقعات کے ذریعے انہیں ہلایا گیا. لیکن اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے امتحان کے لیے یہ عالم بنایا. ایک طرف شیطان دعوت دیتا ہے, ایک طرف نفس کھینچتا ہے, خواہشات اور ہوا اپنی طرف کھینچتی ہیں, دنیا اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے. تو بڑی تعداد ان چیزوں میں سے کسی کے ذریعے گمراہ ہوئی. ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب پہنچے اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا اور وہ ایمان سے محروم اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جن کے لیے سعادت مقدر تھی, وہ مشکل ترین حالات سے گزر کر بھی انہوں نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور اس پر جمے رہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان محفوظ رکھے. انہی میں ایک بڑا واقعہ حضرت اکثم صحیفی کا ہے, جن کی عمر 200 برس کے قریب بتائی جاتی ہے, اور بنو تمیم کے سردار. تو جب انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچتی ہے تو خود سفر کا ارادہ فرماتے ہیں. تو سارا قبیلہ, 200 برس میں کتنی ان کی اولاد ہوگی, ہزاروں افراد ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, مال میں بھی برکت اور نسل میں بھی برکت, اولاد میں بھی برکت, ہر چیز میں برکت ہی برکت. اسپیشل بارشیں ہو رہی تھیں ان کے, اور کہیں نہیں ہو رہی, صرف ان کے باغ میں ہو رہی ہے. جو کچھ درخت بھی کہ جن کے بے موسم پھل آتے تھے, برکت کی دعا کا اثر. لکھا ہے کہ تقریباً 80 کے قریب خود ان کی اولاد ہوئی, بیٹے اور بیٹیاں, اور اس میں بھی انتخاب دیکھیے اللہ کی طرف سے. اوہو, نبوی دعا کا اثر تو دیکھیے. لکھا ہے کہ ان اتنی ساری اولاد میں بیٹے ہی بیٹے, صرف 2 بیٹیاں, باقی سارے کے سارے بیٹے. تو یہ 200 برس کے قریب ان کی حقیقی اکثم صحیفی کی عمر ہوئی, تو ان کی بھی فوج کی فوج ہوگی. تو انہوں نے دیکھا کہ کسی نے دیکھا کہ ابا جان جا رہے ہیں, کسی نے سوچا کہ وہ میرے دادا جان چلے جائیں گے, کسی نے سوچا ہوگا کہ وہ میرے نانا جان, کسی نے سوچا ہوگا میرے پردادا, اور اس سے بھی آگے پردادا سے بھی اوپر چلے گئے ہوں گے, پر نانا سے بھی اوپر چلے گئے ہوں گے. تو اب یہ ساری کی ساری اولاد کیسے جانے دیتی؟ ان کا نا آپ نہیں جا سکتے. تو پھر آخر مجبور ہو کر انہوں نے عریضہ لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور उनके बेटे हुबैश इब्न अक्सम के ज़रिए भेजा, और तबीयत में पहले ही सलामती थी, ईमान लाने से पहले ही लिखा बिस्मिकल्लाहुम्मा, लिखा मिन अल अब्द अक्सम इलल अब्द, कि अल्लाह के बंदे अक्सम की तरफ से अल्लाह के किसी बंदे के नाम, एक ख़ास बंदे के नाम जो मेरे जहन में है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, इसलिए मिन अल अब्द अक्सम इलल अब्द। अम्मा बाद, فأخبرنا من أنت وبما جئت وقد بلغنا عنك خبر وإن كنت أريد فأرنا وإن كنت علمت فعلمنا وأشركنا معك في خير والسلام. یہ مختصر تحریرات ایک قسم کی مجبوری بھی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہمارے یہاں دیکھیے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں کتنے سمندر کے سمندر، ہر چیز کے اقلام اور اوراق، اور اب تو یہ کمپیوٹر اور ٹیلی فون، لکھتے ہی چلے جاؤ، ساری عمر لکھتے رہو تو بھی کاغذ کی کمی نہیں، لیکن ان کے یہاں تو چونکہ کبھی ہڈی پر لکھا، کبھی پتے پر لکھا، کبھی کس چیز پر لکھا، کبھی بعض حضرات کو بھیجا گیا کسی خصوصی کام کے لیے اور اس کو راز رکھنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس خط ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا ارادہ فرما رہے ہیں. تو حاتب ابن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ میرے بچوں کی حفاظت کے لیے اگر میں اطلاع کر دوں مکے والوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس سیکرٹ کو اگر میں پاس کر دوں اور ظاہر کر دوں. تو انہوں نے کسی مکے جانے والی خاتون کے ذریعے وہ خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا من حاتب بن ابی بلتع الى رؤساء قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. وہاں کیا چیز چھپی رہتی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک نہیں بڑھایا، اور ایک دوسرے حاضرین نہ سمجھ سکیں اس طرح، یا صاحب الجزیبہ کہ وہ جو تم نے ذرا سا کسی کو کھینچ لیا تھا کمر پکڑ کر کے کسی گزرنے والی باندھی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے انہوں نے ہاتھ بڑھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بیعت کے لیے نہیں بڑھایا اور ان کو واقعہ یاد دلایا کہ وہ جو کسی گزرتی ہوئی خاتون کو جو ہاتھ جس ہاتھ سے تم نے چھوا ہے اس کے ذریعے وہ مجھے ہاتھ میرے ہاتھ میں بیعت کے لیے دو گے. اوہو، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ توبہ کرتا ہوں. فوراً قبول، اسی وقت، کوئی دوسرا کلمہ نہیں، فوراً، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی تو اسی آن ختم. کاش کہ ہم توبہ کرنا سیکھیں، اور توبہ کے الفاظ کتنے آسان، یا عفو، یا غفور، یا غفار، یہ بھی توبہ، یہ بھی استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی توبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی توبہ، اور ایک سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. और वहाँ बयान में मैंने साथियों से कहा था कि अच्छा एक सांस में सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह, तो मैंने कहा कि देखो एक सांस में 10-15 दफ़े आप पढ़ लेते हैं और 8-10 सांस में 100 दफ़े पढ़ सकते हो। 100 दफ़े पढ़ने की फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, इरशाद फरमाया कि गुनाह सारे माफ़ व इन कान मिसल ज़बद अल बहर, समंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे वो भी इस तस्बीह के ज़रिए धुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तरीक़े हमें बताए सफाई के, पाक होने के। ये मुबारक महीना है, मुबारक अय्याम हैं, मुबारक रातें हैं, मुबारक साते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन सातों में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, तो वो जैसे ही सहाबी कहते हैं मैं तौबा करता हूँ वला अऊद, और इंशाअल्लाह मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, फौरन दस्ते मुबारक बढ़ा दिया, उनको बेहद फरमा लिया। तो ये खातून हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहु और उनके साथियों को भेजा कि फ़लाँ मकाम पर एक औरत मक्का मुकर्रमा के रास्ते में है, उसके पास एक ख़त है, वो ले आओ। पहुँचे तो उसी जगह पर वही खातून मिलती है। कितने मज़ेदे साहबे कराम, कितना ईमान बढ़ता होगा कि हर घड़ी एक एक दिन में सैकड़ों मौजज़ात देखते थे, इस चीज़ की इत्तला हो जाती है, उसकी इत्तला हो जाती है, वो पकड़ा जाता है, वो छोड़ दिया जाता है, वो आलम बाला में क्या हो रहा है, तहत अल-अर्द क्या हो रहा है, हर चीज़ की इत्तला। तो ये औरत के पास जा पहुँचे, ख़त के लिए पूछा, उसने इनकार किया, डराया धमकाया फिर भी उसने इनकार किया, तो साथी तो ज़रा मुतामिल हो गए, तो उन्हें तामुल होने लगा कि पता नहीं क्या बात है, शायद ये औरत ना हो और कोई हो, ये तो ना कहती है। हज़रत अली करमल्ला वजहू ने फरमाया कि नहीं, तो हम लेकर छोड़ेंगे, इसी के पास है। और फरमाया कि ख़द दो वरना तो हम तुम्हें नंगा करते हैं, लउजर रिदन नक। तो अब तब जाकर उस खातून ने जो शर्मगाह के पास कपड़ों में वो ख़त छुपाया हुआ था निकाल कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, पढ़ा गया मिन हातिब बिन अबी बलता इला रुसा कुरैश, बुलाया तो उन्होंने जैसा मैंने अर्ज़ किया, हज़रत अली उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जोश आया, जोश में फरमाने लगे या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ, ये मुनाफिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं, पूरी बात सुनो। फिर उन्होंने अपनी कहानी जब बयान फरमाई तब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा गई है कहानी जो इन्होंने बताई अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, और जो दिन में उनको यकीन था कि इस्लाम और मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे कोई गज़न नहीं पहुंच सकेगा, ये बात भी इसकी दुरुस्त सिदक़े दिल से कही गई। बुरी नीयतें भी मालूम हो जाती थी, ईमान भी मालूम हो जाता था, सच झूठ दिल में झांक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते थे। तो ये ख़त अक्सम सैफी अपने बेटे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज रहे हैं और उसमें लिखते हैं कि मिन अल-अब्द अक्सम इला अल-अब्द अम्मा बाद फ़ाख़बिरना मन अंत, बताइए आप कौन हैं, वो भी मजीद क्या लेकर आए हैं, वक़द बलगना अन का ख़बर, हमें कुछ आपके मुतालिक ख़बर मिली है, फ़ैन कुंत उरीद फ़रीना, आपने कुछ आपको कुछ दिखाया गया है तो आप हमें भी दिखाएं, कोई मौजज़ा दिखा दें, वैन कुन तअल्लिमत फअल्लिमना, और अगर आपको कोई इल्म दिया गया है तो हमें भी सिखलाइए, ताकि वह शरीक ना मांगा भी खैर और हमें इल्म अपने साथ सिखला कर गए, जो नेमतें आपको दी गई उनमें हमें शरीक फरमा कर गए, भलाई में हमें शामिल कीजिए। वस्सलाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साहबजादे के ज़रिए इसका जवाब तहरीर फरमाया, मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह इला अक्थम। फिर अपना तारुफ फरमाया, अम्मा आना फ़मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अब्दुल्लाह व रसूल। मेरा नाम ये, ख़ानदान ये, और जो मैं लेकर आया हूँ, वअम्मा अल्लज़ी जीतु बिही, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर और वइन्नल्लाह अमरनी अन अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुझे इस कलमे के ऐलान का हुक्म फरमाया है, वलतअलमन्ना नबाहु बाद हीन। वस्सलाम। कि कुछ अरसे के बाद तुम्हें इस कलमे की हकीकत पता चल जाएगी कि यह सारी दुनिया में पहुंच कर रहेगा। जब अक्थम के पास जवाब पहुंचा, ख़त पढ़ा, तो कहा, नसब वसीत, बड़ा मुबारक ख़ानदान, बड़े मुबारक ख़ानदान से हैं। वरा यामुर बिल मकारिम अल अखलाक, और मेरा गुमान है कि अच्छे कामों का हुक्म देते हैं। वयनहा अनिल मलाइमिहा, बुरे कामों से रोकते हैं। फ़कूनु फ़ी हाज़ल अम्र रूसा वला तकूनु अदनाबा, तुम इस काम में पेश पेश रहो, साबिकीन अवलीन में से बन जाओ, अखीर में जाने वाले मत बनो। फिर अक्थम ने ऐलान किया अपनी सारी ज़ुर्रियत को और सारे कबीले को और बनु तमीम को, सबको इकट्ठा करने का हुक्म दिया और शर्तें लगाई कि कोई बेवकूफ़ अहमक इंसान मेरे करीब ना आए, इसलिए कि बेवकूफ़ और अहमक की ज़ुबान से कोई एक कलिमा निकलता है, सारी मजलिस उससे मुतासिर होती है, उसकी हिमाकत का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है। आगे फरमाया कि अगरचे वो देखने में कितना तंदुरुस्त जिस्मानी एतबार से मालूम होता हो, लेकिन उसका दिमाग ख़राब, अक़ल उसके पास नहीं, तो ऐसा शख्स मेरे पास ना आए। वलाखिर फ़ीमन कान कदालिक। फिर जब सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उन्होंने दावत दी, फिर उन सबको इस्लाम का हुक्म दिया और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेबा का हुक्म दिया कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को कबूल कर लो, और आप पर ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो। तो मालिक इब्न नुबैरा यरबुई फौरन खड़ा होता है, उनको ये ऐसा ही ख़दशा था, ऐसे ही लोगों के आने से नुकसान का ख़तरा था, इसीलिए ऐलान किया था कि ला यहज़ुरुनी सफ़ीह। चुनाचे वो ख़तरा पेश आ गया कि मालिक इब्न नुबैरा खड़ा होकर कहता है कि इन हाज़ा शैख़ क़द ख़रीफ़, कि बुढ़ापे में जो अक़ल कम हो जाती है, दिमाग अपना काम करना छोड़ देता है, तो इस कहने लगा कि इस 200 साल के बूढ़े की बातें मत सुनना, किस पर अमल न करना, और ये तो हलाकत की तुम्हें दावत देते हैं, बला और इम्तिहान और मुसीबत तुम्हें उनकी बातों में आने से पेश आएगी, तुम इनकी बात मान लोगे अक्थम सैफ़ी की तो तुम्हारी जमीयत मुंतशिर हो जाएगी, तुम जलील हो जाओगे। तब जवाब में अक्थम ने भी लोगों से ये कहा, दरु कलाम हादल अहमक, इस अहमक का कलाम छोड़ो, ये जो इस्लाम है ये हक है, जब ये यकीनन खड़ा होगा और मज़बूत होगा और बातिल का भेजा निकाल करके रहेगा। अब बड़ी जमीयत के साथ, बनो तमीम के बड़े काफ़िले के साथ अक्थम सैफ़ी का सफ़र शुरू होता है। जिस बेटे को भेजा था उसी को किसी ने बरगलाया होगा, मालिक इब्ने नुबैरा जैसों ने, तो उसने एक रात रास्ते में सारी सवारियों के पैर काट दिए और जितना पानी था सारा बहा दिया और वो भाग गया। अब पानी नहीं है, सवारियां नहीं है, वहाँ रेगिस्तान में कहाँ तलाश करेंगे पानी। अख्तम सैफी का इंतकाल हो जाता है, लेकिन इस हाल में भी जब मौत के आथार महसूस किए तो साथ वालों को वसीयत की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की वसीयत की और साथ वालों को, रफ़क़ा को गवाह बनाया कि अन्नहु मुस्लिम, कि मैं मुसलमान हूँ। इसीलिए हज़रत इकरिमा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि क़ुरान करीम की आयत वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही थुम्मा युद्रिकुल मौत फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, ये अख्तम सैफी के इस क़िस्से में यह आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला हमारा ईमान पर ख़ातिमा करे। हज़रत अख्तम सैफी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल आपने सुना, जिनके बारे में क़ुरान करीम में आयत उतरी वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन, तो उन्होंने सारी अपनी जमात को, अपने सारे ख़ानदान को जिनको लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए और बैत के लिए और इस्लाम लाने के इरादे से चले थे, उन सब को आखिरी वक्त में गवाह बनाया कि तुम सब वहाँ पहुँचो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम अर्ज़ करना और अर्ज़ कर देना बेअन्नी मुस्लिम, कि मैं इस्लाम ले आया। इस पर फिर उनकी वफ़ात हुई। तो यही बैत का मकसद है कि इस बैत में जो आहद किया जाता है उसको हम ऐसा निभाएं कि चाहे माल औलाद जायदाद मुल्क मनाल रहे न रहे, लेकिन ये आहद मुट्ठी में बंद मज़बूत हम पकड़े रहें, कभी न छूटे। अब इतना बड़ा ख़ानदान जिसमें पता नहीं कितने बेटे होंगे, पोते होंगे, नवासे होंगे, अपना ही सारा ख़ानदान सैकड़ों का, और वो मर रहा है, मौत सामने है, सबकी मौत इनके सामने है, लेकिन फिक्र है यही कि मेरा जाकर सलाम अर्ज़ कर देना और पहुंचा देना भी अन्नी मुस्लिम। काश कि हिरक़ल ने एक ऐसा किया होता, काश कि किसरा ने किया होता, जिनको बार बार याद दहानी कराई गई। तो और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम जो सदियों बाद आए, उनके हालात आप पढ़ें तो हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह के यहाँ सैकड़ों करामतें, हज़रत शेख उलिस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हज़ारों करामतें, हज़रत शेख उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, सब के यहाँ। तो ये सब उसी नूर नबवी का परतव और इनका ज़िल और इनका साया है जो हर ज़माने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा कराने के लिए उनके हाथों सरजद होती हैं कि वो सहाबी सुबह सुबह बैत के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ओ इस हाथ से तो तुमने किसी को खींचा था अपनी तरफ। तो ऐसे कितने वाक़यात, हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह के हैरत अंगेज़ वाक़यात पढ़ लीजिए, हज़रत शेख उलिस्लाम के हैरत अंगेज़ वाक़यात पढ़ लीजिए, और क्या वो ख़त जो कैसे चोरी छुपे कहाँ बैठकर लिखा होगा हातिम इब्न अबी बल्तान है, वो चोरी पकड़ी गई। तो ये सब की सब जितनी करामतें हैं जो हमने हमारे अकाबिर की देखी और पढ़ी, वो सब उसी की याद दहानी के लिए है। काश के वो हिरकल इस चीज़ को समझ पाता और इसने इस्लाम कबूल किया होता तो आज ये इराक, शाम, यमन और तमाम दुनिया में क़यामत न देखती। किसरा ने दीन नबवी अपना लिया होता, गिरामी नामे में जो हुक्म था असलिम, तो काश के वो इस्लाम लाया होता तो ये दुनिया दुखी न होती। और ये क्या मुकाम आकाए नामदार ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो अम्बिया अलैहिस्सलात वस्सलाम से बैत ली गई, मालिक ने उनसे बैत ली, उनसे अहद लिया। इरशाद फरमाया कुरान में, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीथाक़ अन्नबियीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كتني الزور دار آيات كيسي بيعت كيسا عهد كيسا إقرارنا ما مالك لے رہا ہے كن سے لے رہا ہے آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام سے لے کر क़यामत तक के लिए जो जो नबी और रसूल मालिक भेजने वाला है उन सब से ले रहा है कि जब अल्लाह ने अम्बिया अलैहिस्सलाम से पुख्ता अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास रसूल आए जो सच्चा बतलाने वाला हो, उसको जो तुम्हारे पास है, तो तुम उस रसूल पर जो नबी आखिरुज़्ज़मान होंगे उस पर ईमान लाओगे और उनकी नुसरत करोगे। अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस पर मेरा अहद तुमने कबूल किया? अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज़ किया कि हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया कि फिर तुम गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में से हूँ। तो ये जिसे आप सुनते हैं कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग से बैत थे, फ़लाँ से बैत हुए, मैं फ़लाँ के पास गया बैत के लिए, तो इसको तावीज़ गंडे और वजीफ़ा वज़ाइफ़ सीखने का तरीक़ और रास्ता मत समझो। ये तो ये अहद है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम से मालिक ने लिया, उसको हर ज़माने में ताज़ा किया जाता रहा। वो अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों को बताते थे कि एक नबी आखिरुज़्ज़मान आने वाले हैं, उनकी ये शान है, और हमने तो मालूम नहीं कि इस बैत को क्या समझ रखा है। और मालिक ने जगह जगह इसको समझाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लदीन जाहदु फीना 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 वल्लदीन जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वो लोग जिन्होंने मुजाहदा किया हमारी खातिर, हमारी खातिर, हमारी ज़ात पाक के लिए, तो हम उन्हें हमारे रास्तों की ज़रूर रहनुमाई करेंगे। और यकीनन अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। तो ये फीना को मैंने बार बार क्यों दोहराया कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। कोई चाहता है कि ब्याज से वजीफ़ा मिले, दुआ किसी बुज़ुर्ग की मिले, औलाद मिले, दुनिया मिले, माल मनाल मिले, बीमारियों से शिफा मिले, दुश्मनों से रिहाई और नजात मिले। दोस्तों, इसका मकसद ही कुछ और है। वल्लदी नजाद उफीना। और ये किसने हमें समझाया? शुरू से लेकर आज तक एक दफ़े मैंने भाईजान नवर अल्लाह मरकदहू को कोई वाक़या सुना है कि पेशगी आने वाले उम्र की जो इत्तला हो जाती है, तो इसमें मालिक ही की रब ताला की फुला फुला सिफात की तरफ तवज्जुह ख़ास या उसका ज़्यादा विर्द या उसकी तरफ कल्ब की गहराइयों से मुतवज्जह होने को बड़ा दखल है कि या हय्यो या क़य्यूम से इब्ने तैमिया ने लिखा है कि उससे दिल जिंदा हो जाता है, ये इसमें आज़म है। हज़रत हाजी हमजाउल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ अज़कार तालीम फरमाए तो वहाँ फरमाया कि या हद या समत या फ़र्द या वतर या हय या क़य्यूम, इनको इसमें बड़ा दखल है। किसी ने तजर्बा किया कि पास अनफास के ज़रिए या हई सांस आधा लंबा या और फिर छोड़ते हुए हई, फिर लंबा या छोड़ते हुए क़य्यूम, या हई या क़य्यूम या हई या क़य्यूम, सोने से पहले आधा डाल ले, न कोई ताब न ज़ुबान थकेगी न नींद में कोई खलल आएगा, वो अपने वक्त पर। अब कितना आसान काम, सोने से पहले तमाम कामों से फारिग होकर पढ़ना था वो पढ़ लिया, अभी सोने की रग़बत है तो उससे पहले पेट फूलने तक किया को खींचते रहें, जब पेट सांस न रुक सके तो उसके बाद छोड़ते हुए हई का तसव्वुर किया जाए, फिर लंबा सांस या वाला और फिर सांस छोड़ते हुए क़य्यूम, तो या है या क़य्यूम, तो उसी से दिल जिंदा होकर आलम बाला से कोई ना कोई मुनासबत उसे हो जाती है। तो भाईजान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हज़रत शेख क़ुद्दस सिर्रहू और हमारे अकाबिर के यहाँ बार बार इसको दोहराया गया कि ये जो सालिक को अहवाल पेश आते हैं, कभी अनवारात देख लिए, कभी क्या देखा कभी क्या देखा, तो फरमाया कि ये तो अलाबुन तुरब्बा बिहा अतफाल तरीक़ा, कि जो ये तो खिलौने हैं जिससे बच्चों का दिल बहलाया जाता है, इसमें क्या रखा है, वो तो ज़ात पाक ही की तरफ तवज्जो रखे, अल्लाह 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 अल्लाह, वही अल्लाह अल्लाह ही की तरफ तवज्जो ख़ास हो। अल्लाह ताला हमें अपने अपनी ज़ात पाक की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए सैर इलल्लाह, अल्लाह की तरफ सैर, अल्लाह की तरफ सफ़र, सुलूक इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। तो ये एक बुज़ुर्ग हैं, बहुत ऊंचे बुज़ुर्गों में से, बड़े अजीब अहवाल इनके। हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से उन्होंने ये तमाम चीज़ें सीखी, हज़रत अला इब्ने ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने आकर अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि अय्युल मुजाहिदीन अफजल, के मुजाहिदीन में सबसे अफजल मुजाहिद कौन सा। क़ाल मन जाहद नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह अज़्ज़ वजल, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात की खातिर, वहाँ भी वल्लज़ीन जाहदू फीना, जिन्होंने हमारी खातिर हमारी ज़ात की खातिर मुजाहदा किया, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो यहाँ सबसे ऊंचा मुजाहिद किसे बताया गया, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात पाक के खातिर अपने नफ्स जिहाद में लगा रहे। ये मैंने अर्ज़ किया कि इनके बहुत ऊंचे हालात, बहुत ऊंचे वाक़यात, हज़रत मुआद बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या क्या तालीम इन्होंने हासिल फरमाई और हमें पहुंचाई। हज़रत मालिक इब्ने दीनार ने किस्सा सुन रखा होगा, तो वो हिशाम इब्ने ज़ियाद से इसके मुतालिक सवाल करते हैं कि वो किस्सा क्या था अला इब्ने ज़ियाद का। उन्होंने फिर वो किस्सा बयान फरमाया कि शाम से एक शख्स हज की तैयारी करके निकले, तो ख्वाब में देखते हैं कि किसी ने आकर ख्वाब में हुक्म दिया कि तुम इराक जाओ, इराक में फिर बसरा जाओ, फिर तुम बनी आदी में पहुँचो, उस कबीले में बनी आदी में अला इब्ने ज़ियाद से मिलो। और यही हज़रत मौलाना अब्दुल हय साहब लखनऊ में अपने उस्ताद से पढ़ रहे थे, एक दिन अलसबा उस्ताद महतरम को ख्वाब सुनाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि तुम मुंबई जाओ, वहाँ से रेल में सफ़र करो, एक स्टेशन आएगा कीम, वहाँ उतरो, वहाँ से इतने मील के फासले पर एक कस्बा है तरकेसर, वहाँ जाओ। अब वो ख्वाब में देख रहे हैं, तरकेसर पहुँचे और वहाँ जामे मस्जिद के पीछे एक महल्ला है, जब तुम उसमें पहुँचोगे तो वहाँ इस हुलिये के ये बुज़ुर्ग होंगे। तो उस्ताद मोहतरम ने ख्वाब सुनते ही फरमाया जल्दी करो, जल्दी जाओ। चुनाचे वहाँ पहुँचे जामे मस्जिद के पीछे महल्ले में, तो वहाँ देखा कि वो जो सूरत शक्ल हुलिया दिखाया गया था वो तो यही है। हज़रत मूसा जी मेहतर रहमतुल्लाह अलैह जानवरों को चारा डाल रहे थे। इन्होंने पहुंचकर अपनी तरफ मुतवज्जह करने की नीयत से सलाम किया दूर से, अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ख्वाब देखकर तशरीफ़ ले आए, इसकी भी इत्तला है यहाँ। तो वो यहाँ भी हुक्म हुआ कि एतिल इराक ثم أتي البصرة ثم أتي بني عدي فأتي بها علاء ابن زياد، اور کام کیا تھا فبشره بالجنة، تم وہاں جاؤ اور علاء ابن زیاد کو جنت کی بشارت دے دو۔ پہلی رات سوچا کہ یہ رویا لیست بشی، یہ تو تصورات ہوں گے۔ دوسری رات میں پھر دیکھا، تیسری رات میں پھر دیکھا، چنانچہ عراق کی طرف رخ موڑ لیا۔ اب کتنا انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ کس طرح تربیت فرماتے ہیں اپنی مخلوق کی، کہ وہ رب العالمین ہے، تربیت ہماری فرماتا ہے، اسی لیے تو وہ ہمارا رب ہے، ربوبیت اسی کے شایہ نشان ہے۔ تربیت ایک چھوٹے سے جو پیٹ میں بھی بچہ ہے اس کی تربیت کیسی، اس کی ضرورتیں کیسی، اور کیسے مالک پورا فرماتے ہیں۔ جب دنیا میں آتا ہے پہلا دن، دوسرا دن، پھر دودھ، پھر غذا، ہو ہو۔ تو یہ تربیت یہاں صرف حکم دے کر مالک نے اس کو چھوڑ نہیں دیا، اب وہ عراق کی طرف ان کا رخ ہے اور عراق وہ جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ فلما خرج من البيوت اذا الذي اتاه في منامه يسير بين يديه، کہ وہ قائد بنا کر جس کو خواب میں دیکھا تھا وہی شخص آگے آگے چل رہا ہے۔ فاذا نزل فقده، جب منزل کر کے اپنی منزل پر وہ پہنچ گئے، تو ابھی منزل پر پہنچنے والے ہیں، کوفے میں منزل فرمائی، تو ابو غائب جو قائد تھا رستہ بتلانے والا، اب کوفے سے دوبارہ جب بصرہ کے لیے چلے ہیں، تو پھر وہ خواب والا ہاتف جس نے آواز دی تھی ایت العراق، تو وہ پھر آگے آگے۔ فخرج فرآہ یسیر بین یدیہ حتی قدم البصرہ، بصرہ پہنچ گئے، وہاں بنی عدی میں پہنچے، معلوم کر کے علاء ابن زیاد کے گھر تک پہنچ گئے۔ اب انہوں نے وہاں علاء ابن زیاد کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، تو ہشام ابن زیاد علاء ابن زیاد کے بھائی، ان کے برادر، فرماتے ہیں فخرجت الیہ، کہ میں خود سلام کی آواز سن کر گھر سے باہر نکلا، تو مجھ سے مسافر پوچھتے ہیں کہ آپ علاء ابن زیاد ہو؟ میں نے ترس کیا کہ نہیں، میں علا نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں عصر کی نماز کے بعد، جس کو طلبہ بورڈنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو میں وہاں بالکنی تھی، وہاں پودے لگا رہا تھا، اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہاں طلبہ میرے ساتھ کھڑے پودے لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور اس وقت ہمارے طلبہ کے نگراں ہوتے تھے جنہیں امیر صاحب کہا جاتا تھا، تو وہ امامہ شیروانی میں ملبوس اور میں اپنے باغبانی کے کپڑوں میں، देखा कि कोई तालिब इल्म किसी मेहमान को लेकर सीढ़ी चढ़ रहा है. सीढ़ी चढ़ते ही मेहमान ने देखा हमारे पटेल साहब को, अमीर साहब को, तो ज़ोर से उन्होंने कहा वहीं से, अस्सलाम वालेकुम मौलाना यूसुफ़ साहब. तो वो अमीर साहब बजाय उनकी तरफ आगे बढ़ने के वो पीछे हट रहे हैं कि मैं मौलाना यूसुफ़ नहीं हूँ, ये मौलाना यूसुफ़. तो इस तरह यहाँ वो अला इब्ने ज़ियाद के मुतालिक पूछते हैं कि अंतर आला कुलतुला, मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ. तो हिशाम इब्ने ज़ियाद ने उनसे फिर कहा कि आप अपना सामान वगैरह उतार लीजिए, सवारी को एक तरफ कर दीजिए. तो इन्होंने, मुसाफिर ने इसरार किया और कहा कि नहीं, मैं अभी सामान नहीं उतारता. अइन लाला, अला इब्ने ज़ियाद कहाँ है? तो हिशाम फरमाते हैं मैंने कहा कि वो मस्जिद में है. मस्जिद में क्या करते हैं? वकान अला यजलिसु फिल मस्जिद व यदउ बिदअवात व युहद्दिस, के अला इब्ने ज़ियाद मस्जिद में पहले दुआ फरमाते थे और उसके बाद हदीस का दर्स देते थे. قال هشام فأتيت العلاء فخفف من حديثه وصلى ركعتين. تو هشام فرماتے ہیں کہ میں علا ابن زیاد کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی نماز مختصر فرما دی اور دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا اور مسافر کو دیکھا. آنے والے مسافر کو دیکھ کر علا ابن زیاد مسکرا رہے ہیں اور اتنے زور کی ہنسی کہ فبدت तनीयतुहु, सामने वाले दांत साफ नज़र आने लगे कि उनकी इस तरह हंसी की आदत नहीं थी. और वह फरमाने लगे मुसाफिर को देखकर, हादा वल्लाहि साहिबी, इनको भी पता है जिस तरह मुसाजी मेहतर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि वो ख्वाब देखकर तशरीफ ले आए. तो उसके बाद वो अला इब्न ज़ियाद ने इनसे कहा कि आप अपना सामान वगैरह उतार लें. तो उन्होंने कहा कि मुझे आप तखलिये का मौका इनायत फरमाएं, मुझे कोई बात करनी है. तो कहते हैं आला इब्ने ज़ियाद अपने घर में दाखिल हुए और अहलिया से फरमाया, या आसमा तहवली इलल बैत अल आखर, के दूसरे कमरे में तुम चली जाओ. तो कहते हैं कि मैं एक तरफ हट, जो भाई के पास मेहमान को लेकर गए थे वो हट गए. और कहते हैं कि अला इब्ने ज़ियाद और वो मेहमान आने वाले दोनों कमरे में दाखिल हो गए और उन्होंने पूरा अपना ख्वाब सुनाया कि मेरा हज का इरादा था और मैंने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी. तो मुझसे ख्वाब में कहा गया कि तुम इराक़ जाओ, फिर बसरा पहुँचो, बनी अदी में जाओ, वहाँ अला इब्ने ज़ियाद से मिलो, वह बशीर हो बिल जन्ना, और उनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो. अब ये बशारत अला इब्ने ज़ियाद ने सुनी तो उसके बाद बस उन्होंने अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लिया. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, बाद रिवायत में है कि सात दिन न खाना न पीना न और कोई काम, रोना रोना रोना, रोते ही रहे. वला यफ्तह बाबहु, तो रोते हुए क्या कहते, आना आना. और कहते हैं कि हम आवाज़ें सुन रहे थे, रोज़ 24 घंटे रोए ही जा रहे हैं, दरवाज़ा भी नहीं खोलते. कहते हैं हम डरते थे कि कहीं दरवाज़ा खोलें. तो फ़ातहतुल हसन, तो कहते हैं वहाँ हज़रत हसन बिसरी से जाकर हमने दरख्वास्त की कि इस तरह बशारत लेकर कोई मेहमान आया, बशारत सुनी और तीन दिन से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और रोते हुए उनका बुरा हाल है. हज़रत हसन बिसरी तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा बजाया, जब हज़रत हसन की आवाज़ सुनी तब दरवाज़ा खोला. और उन्होंने भी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी बशारत दी, मुबारकबाद दी, रहिमकल्लाह वमिन अहलिल जन्ना इंशाअल्लाह, लेकिन क्या अभी तुम इस तरह खाना पीना आराम हर चीज़ तर्क करके मरना चाहते हो? तो इन्होंने अला इब्ने ज़ियाद ने अपने भाई हिशाम इब्ने ज़ियाद से और हज़रत हसन बिसरी से अहद लिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो वहाँ तक ला तुहद्दिथु बिहा मा कुंत हय्यन, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो किसी से ये बिशारत बयान न की जाए। तो उन्होंने हज़रत अला इब्ने ज़ियाद ने हमें सिखाया कि ये सुलूक मुजाहदा बेयत इबादत काहे के लिए है। फरमाया फ़ी ज़ातिल्लाह अज़्ज़ा वजल, काश के हम उसी मालिक की ज़ात ही की तरफ मुतवज्जे रहें, उसी से मोहब्बत, उसी से लव लगाएं, उसको देखते रहें कि वो थर्मामीटर में चेक करते रहें कि मालिक की मोहब्बत बड़ी नहीं बड़ी। अब तो हमने दिमाग में कभी इसको सोचा ही नहीं। हम बेशक नमाज, तिलावत, पढ़ना पढ़ाना बहुत सवाब के काम हैं, लेकिन ये मालिक की याद दिल में बसाना और उसकी तरफ चलना, हर वक्त उसी का ध्यान रहे, अल्लाह ताला ये दौलत हमें मैसर फरमा दे और माह मुबारक की मुबारक घड़ियों में हमारी दुआएं कबूल कर ले कि हम मालिक ही के बनकर रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।